संख्या 61। अफीम युद्ध के पश्चात छिंग सरकार ने ब्रिटेन को हर्जाने जाने की रकम अदा करने के लिए जनता पर करों का बोझ बढ़ा दिया। विदेशी पूंजी निवेश के कारण देशीय अर्थव्यवस्था का पतन होने लगा। नए दबावों के कारण ग्रामीण शोषण बढ़ता चला गया तथा भूस्वामी कब्जे द्वारा और अधिक भूमि का अधिग्रहण करने लगे। कुआंगतुंग प्रांत में जहाँ होंग शियो छुआन का जन्म हुआ था, वहाँ पर 1830 तक लगभग 90% चावल की खेती भूमिहीन कृषकों द्वारा की जाती थी। कृषक श्रमिकों की संख्या उपलब्ध भूमि से कहीं अधिक थी, जिसकी वजह से कृषकों पर होने वाला शोषण बढ़ता जा रहा था। बैरिंगटन मूअर जूनियर के अनुसार सरकार तथा उच्च वर्गों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कृषक अपने जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक समझते थे। अतः शासकों और शासित वर्गों के बीच संबंध बहुत ही नाजुक एवं बनावटी हो गए और वे किसी भी गंभीर संकट में टूट सकते थे। द गवर्नमेंट एंड द अपर क्लासेस परफॉर्म्ड नो फंक्शन डैट द पीजेंट्स रिगार्डेड एज इसेंशियल फॉर दियर वे ऑफ लाइफ। हेंस द लिंक बिटवीन रूलर्स एंड रूल्ड वाज वीक एंड लार्जली आर्टिफिशियल, लाइएबल टू स्नैप अंडर एनी सीवर स्ट्रेन। मूअर के अनुसार चीन ने कृषकों का जीवन संपत्तिहीन, परिवारहीन तथा धर्महीन, यानी नो प्रॉपर्टी, नो फैमिली एंड नो रिलीजन था। भूमिहीन होने के कारण उनके पास संपत्ति नहीं थी, धन के अभाव में विवाह न होने के कारण परिवार नहीं था, और कन्फ्यूशियस धर्म के आचारों से भी उनका कुछ लेना देना नहीं था। कई बेरोजगार कृषक शहरों में आकर कूली, बंदरगाह श्रमिक व नाविक बन गए और कुछ विदेशों में जाकर अच्छे जीवन की तलाश करने लगे। कई अन्य या तो डाकू या चोर बन गए या फिर समाज विरोधी तत्व बनकर बेकार घूमने लगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ऐसे लोगों को शामिल करने का कोई प्रयोजन नहीं था। वे समाज की अशांति का कारण बनते जा रहे थे। थाएफिंग जैसे सत्ता विरोधी आंदोलन के द्वारा इन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक सरल और सीधा मार्ग मिला। पृष्ठ संख्या 62। जोजफ निधम के अनुसार चीन में नौकरशाही सामंतवाद होने के कारण सार्वजनिक कार्य राज्य के नियंत्रण में होते थे और राज्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भूस्वामियों से भी कहीं अधिक कर कृषकों पर लगाता था। वैसे भी शासक और शासकीय वर्ग मिलकर अपने अधिकारों और हितों को कृषकों का शोषण करके पूरा करते थे। यही दोनों उच्च वर्ग राजनैतिक शक्ति, शिक्षा एवं अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से अपना एकाधिकार स्थापित किए हुए थे। अफीम युद्ध से उत्पन्न वित्तीय संकट का भार चीन की जनता पर पड़ा। नानचिंग की संधि में अफीम व्यापार पर पाबंदी लगाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इस बात का लाभ उठाकर विदेशी व्यापारियों ने यह गैरकानूनी किंतु लाभकारी धंधा करना आरंभ किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1848 में लगभग 1 करोड़ रजत के तायल चीन से बाहर चले जाने से गंभीर आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया। इससे तांबे और रजत की विनिमय दर पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। 18वीं शताब्दी में एक रजत तायल 1,000 तांबे के सिक्कों के बराबर होता था। 1850 ईस्वी में यह दर बढ़कर 2,000 तायल हो गया। इस 100% वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय लगभग आधी हो गई। अफीम के अलावा चीन में विदेशी माल के आने से वहां का हथकरघा उद्योग बर्बाद हो गया तथा कृषि अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गई। जिन वर्गों पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था, वही वर्ग इस जन आंदोलन का मुख्य कारण बने। चीन के दक्षिणी तट और उसके आसपास के क्षेत्रों में पश्चिमी व्यापारियों की उपस्थिति के कारण कानून तथा शांति की व्यवस्था बिगड़ती चली गई। 19वीं शताब्दी के आरंभ से व्यापार का मुख्य माध्यम केवल अफीम था। अफीम युद्ध के बाद अफीम का व्यापार शंघाई में होने लगा। पहले यह व्यापार कुआंगचोउ क्षेत्र में किया जाता था। स्थल परिवर्तन का अर्थ था इस व्यापार से जुड़े हुए सभी वर्गों का बेरोजगार होना। यह सभी बेरोजगार लोग थाईफिंग आंदोलन के समर्थक बन गए। ब्रिटिश कंपनियों द्वारा समुद्री डकैतियों को रोकने के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग किए जाने से डाकू लुटेरे भी थाइपिंग आंदोलन में शामिल हो गए। इस प्रकार भूमिहीन कृषक और हक्का समुदाय के अलावा थाइपिंगों को बेरोजगार मध्यवर्गों, नाविकों, कुलियों और डकैतों से समर्थन मिला। शोषण की सीमा और आर्थिक असंतुलन इतना बिगड़ गया कि 1847 ईस्वी में नमक की कीमतों में 2 गुना वृद्धि हो गई। आम जनता की दयनीय स्थिति और शासकीय वर्गों के विरुद्ध विद्रोह की भावना की अभिव्यक्ति त्रिभुज गुप्त समाज ट्रायड सेक्रेट सोसाइटी, जिसने छिंग शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था, के एक घोषणा पत्र में मिलती है। संपूर्ण साम्राज्यवाद में अत्याचारी अधिकारी डाकुओं से बदतर हैं और भ्रष्टाचारी अधिकारी किसी भी भेड़िए या चीते से कम नहीं है। अमीरों द्वारा किए गए अपराध अदंडनीय होकर रह गए हैं और गरीबों की तकलीफ की कोई सुनवाई नहीं। अपने जीविका साधनों से वंचित होने के कारण प्रजा दुख की सबसे निचली गहराइयों में धंस चुकी है। थ्रो आउट द एम्पायर रेपेसियस ऑफिशियल वेयर वर्स देन बैंडिट्स एंड करप्ट मैंडराइन ऑफ द पब्लिक ऑफिसेज नो बेटर देन उल्फ्स एंड टाइगर्स द क्राइम्स कमिटेड बाय द रिच आर लेफ्ट अनपनिश्ड एंड द रॉन्ग्स ऑफ द पुअर नेवर रिड्रेस्ड deprived of their means of support the people are plunged into darkest depth of sufferings। कुछ राजनीतिक हालातों की वजह से भी छिंग शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना जागृत हो रही थी। प्रथम अफीम युद्ध और उसके बाद पश्चिमी राष्ट्रों पर चीन का दबाव बढ़ता चला गया। कई पढ़े लिखे वर्गों ने इसके लिए मांचुओं का तिरस्कार भी किया था। उनके अनुसार मांचू विदेशी होने के कारण अपने सामाजिक अंतर को बनाए हुए थे। ऐसी दशा को चीन में संस्कृति अवहेलना माना गया। मांचुओं के विरोधियों ने नारा दिया, छिंग वंश के विरुद्ध विद्रोह करो और मिंग वंश की पुनः स्थापना करो, रिबेल अगेंस्ट द छिंग एंड रिस्टोर द मिंग। वैसे भी इस समय राजनीतिक शक्ति महारानी तशशी के हाथों में थी, जो सभी अधिकारी पदों की नियुक्ति में छिंग नीतियों का ही पालन करती थी। जनता को इन राजनीतिक घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पढ़ा लिखा वर्ग नौकरी और पद से वंचित होने के कारण राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित कर रहा था। असमान संधियों के बाद कुआंगचोउ के व्यापारी और श्रमिक वर्ग अपने मुनाफे और आय के साधनों में कमी आने के कारण छिंग वंश और पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध होते चले गए। इसलिए कार्ल मार्क्स का कहना उचित है कि थाइपिंग विद्रोह का कारण ब्रिटिश तोपे थी और अफीम युद्ध ने ही चीन की प्रजा को जागृत किया। द थाइपिंग रिवेलियन वाज कॉज्ड बाय ब्रिटिश कैनोन्स एंड डेट द ओपियम वार एक्चुअली वोक अप द चाइनीज पीपुल। चीन का अधिकारी तंत्र गैर जिम्मेदार था, जिसकी ओर से जनता की सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। जो थोड़े अच्छे अधिकारी थे वह अपना समय शोध गतिविधियों, बौद्ध धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने या फिर धार्मिक कार्यों में लगा देते थे। वह अपने आप को उच्च व सर्वोच्च समझते थे तथा जो अधिकारी प्रशासकीय कार्य करते थे उन्हें वह हीन दृष्टि से देखते थे। चीन में अधिकारी पदों को खरीदने और बेचने के धंधे ने भी स्थिति को और खराब कर दिया था। अब 3000 तायल देकर मजिस्ट्रेट बना जा सकता था। यह सभी तत्व इस बात का द्योतक थे कि चीन की राजनीतिक सत्ता पतन के कगार पर खड़ी थी। सभी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का ध्यान था, न कि राष्ट्र के हित का। इसी वजह से जब चीन की जनता परिवर्तन लाना चाहती थी, तब थाइपिंग आंदोलन उनके लक्ष्यों की पूर्ति का एक माध्यम बन गया। पृष्ठ संख्या 65। सारी राजनीतिक शक्तियां शासक में ही केंद्रित थी और कोई भी व्यक्ति प्रशासकीय कार्यों को व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए तैयार नहीं था। अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से प्रशासकीय जिम्मेदारियों को निभाने नहीं दिया जाता था। इसके अलावा उन्हें नियम प्रतिबंध और जांच पड़ताल का पालन और सामना भी करना पड़ता था। अपने बस में न होने वाले मामलों के बिगड़ जाने पर सजा तक हो सकती थी। इसलिए ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि कोई भी अधिकारी कम से कम कार्य जिम्मेदारी लेना पसंद करता था और प्रत्येक कार्य को लिखित रूप अवश्य दिया जाता था, चाहे उसे किया गया हो या नहीं। पताका लश्कर, बैनरमैन, जिसने छिंग वंश की स्थापना में काफी योगदान दिया था, अब पूरी तरह से नकारा हो चुकी थी। इसलिए त्रिसामंतीय विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ थ्री फ्यूडेटरीज को समाप्त करने के लिए शासक को हरिध्वज सेना, ग्रीन स्टैंडर्ड आर्मी का सहारा लेना पड़ा। 1776 से 1804 ईस्वी में सफेद कमल विद्रोह, व्हाइट लोटस रिबेलियन के समय हरिध्वज सेना भी कमजोर पड़ चुकी थी। इसलिए शासक को प्रांतीय सेनाओं पर निर्भर होना पड़ा। लोगों के मन में इन दोनों सेनाओं का जो भय था वह खत्म हो गया। अफीम युद्ध की पराजय के बाद छिंग वंश की सैन्य कमजोरियां साफ नजर आने लगी। चीन के राष्ट्रवादी और उग्रवादी तत्व अपनी अपनी गुप्त संस्थाओं के माध्यम से मांचुओं के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित होने लगे। तजंग कुओफान ने 7 जनवरी 1852 के सम्राट को भेजे गए एक पत्र में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि पहले रजत की कीमत अधिक होने के कारण कर देना मुश्किल हो रहा है, दूसरे चोर और डाकू इतने अधिक हैं कि शरीफ लोगों के लिए शांतिमय ढंग से रहना मुश्किल हो गया है, तीसरे गैर कानूनी गिरफ्तारियों की संख्या बेशुमार है और इसलिए लोगों की शिकायतों की सुनवाई होना मुश्किल है। द फर्स्ट इज डैट द सिल्वर प्राइस इज टू हाई, सो इट इज डिफिकल्ट टू पे टैक्सेस। सेकेंडली, द थिप्स एंड बैंडिट्स आर टू न्यूमरस एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर गुड पीपल टू लिव पीसफुल्ली। थर्डली, द अनजस्टिफाइड इम्प्रिजनमेंट आर टू मैनी, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू रिड्रेस दियर ग्रीवेंसेज। इस पृष्ठभूमि में ही थाइपिंग आंदोलन की शुरुआत हुई।